ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मयितः प्रेयसां पृष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः स्मरन्त्यं च विमोह्यन्ति विरहोत्कण्ठकातरः धारयन्तति कृष्णेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन। प्रत्यागमन सन्देशैः वल्लभ्यो मे मदात्मिकः। श्रीशुक उवाच इत्युक्ता उद्धवो राजन् सन्देशं भर्तुराद्रितः आदाय रथमारुह्य प्रयजौ नन्दगोकुलम्। प्राप्तो नन्दव्रजं श्रीमान् निम्लोचति विभावसौ छन्नयानः निर्विशताम् पशूनां खुररेणुभिः। भाषितार्थेऽभिजुध्यद्भिः नादितं सुस्मिभिर्वृषैः धावन्तिभिश्च वाश्वाश्राभिः रुधो भारैः सुवत्सकान्। इतस्ततो विलङ्घद्भिः गोवत्सैर्मण्डितं शितैः गोदोहशब्दाभिरवाम् वेणूनाम्नि स्वनेन च गायन्तिभिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयोः। स्वलङ्कृताभिर्गोपीभिर् गोपैश्च सुविराजितम् अग्निर्कातिथिगोविप्ल पितृदेवार्चनान्वितैः धूपदीपैश्च माल्यैश्च गोपावासहि मनोरमम्। सर्वतः पुष्पितवनम् द्विजालकुलनादितम् हंसकारण्डवाकीर्णैः पद्मसन्दैश्च मण्डितम्। श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार उक्तः कथित होकर उद्धवः उद्धव राजन हे महाराज परीक्षित संदेशं संदेश कुछ लिखित संदेश और कुछ मौखिक संदेश। भर्तु अपने स्वामी श्री कृष्ण का आदृतः सम्मानित आदाय लेकर भगवान के दिए हुए पत्र को बहुत संभाल करके और उनके मौखिक वचनों को मन में धारण करके रथम आस्थाय रथम आरुह्य रथ पर चढ़कर प्रयोजन गए नंद गोकुलाम नंद महाराज के ब्रज में प्रातः प्राप्त है प्राप्त नहीं है प्राप्त पहुंचे नंद ब्रजम नंद महाराज के ब्रज में श्रीमान उद्धव जी परम सुंदर लग रहे थे निम्लोचती अस्त होते समय विभावसौ भगवान सूर्य के भगवान सूर्य जब है अस्ताचल के निकट पहुंचे उस समय छन्नयान रथ ढका हुआ था निर्विशतां पशूनां वन से ब्रज में प्रवेश करते हुए पशुओं के गायों के खुर रेणु भी है खुर से उड़ी हुई धूली द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करके कहते हैं हे राजन जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा और अपना लिखित पत्र दिया तो उसको लेकर उद्धव जी ब्रज में चले भर्तु संदेशम आदाय अपने भर्तार भरण करने वाले स्वामी के संदेश को आदाय लिए मौखिक संदेश को मन में धारण किए और लिखित पत्र को संभाल करके अपने झोला में या पैकेट में जैसे रखे होंगे रखे और चले उद्धव जी बड़े ही सावधानी से स्नेह से आदर से भगवान के संदेश को रख मन में रखने का आशय यह है कि भगवान जो भी वचन बोले उन एक एक शब्दों को धारण कर लिए एक एक शब्द ध्यान में रखे कि ऐसे बोल रहे हैं नंद बाबा से इस प्रकार बोलना है मां जशोदा से बोलना है और आदृत का अर्थ है जो भगवान के संदेश को बड़े ही आदर के साथ ग्रहण किए आदृत का एक अर्थ है उद्धव जी अत्यंत सम्मानित व्यक्ति हैं भगवान कृष्ण ने उनका बड़ा आदर किया बहुत स्नेह दिया तो भगवान के संदेश को रथ पर लेकर के रथ पर चढ़े रथ पर चढ़कर नंद गोकुलम प्रायय आए प्रकर्षण जयऊ प्रययऊ ययऊ का अर्थ आए या गए और प्रकर्षण विविध मनोरथ के साथ जब रथ पर चढ़े थे तो जिस प्रकार श्री अक्रूर जी ने विविध मनोरथ किया था कि मैं श्री कृष्ण को ऐसे प्रणाम करूंगा, वे अपना हस्त कमल हमारे मस्तक पर रखेंगे। उद्धव जी बारंबार यही चिंतन कर रहे थे कि मैं एक एक बात कहूंगा श्री राधा रानी से, यह बात कहूंगा जो श्री कृष्ण ने कहा है, और यदि वे गोपीजन तर्क करेंगी तो मैं तर्क द्वारा ही उनका समाधान करूंगा, और भगवान ने जैसे कहा है उसको एज इट इज प्रस्तुत करूंगा। इस तरह से विचार कर रहे थे, बदलूंगा नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा था मत्संदेश विमोचन, मेरे संदेश से ही गोपियों का दुख दूर होगा। तुम अपनी कुछ बात या उसमें परपोर्ट आदि मत लिखना, जो मैं कहा हूं उसको कहना। तो उद्धव जी एक एक बात का बड़ा ही चिंतन करते हुए जा रहे थे बहुत स्नेह से, और सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव जी का भाव ये था भर्तु, श्री कृष्ण हमारा भरण करने वाले हैं। भर्तु शब्द का केवल अर्थ ही नहीं कि मकान दे दे, भोजन दे दे, कपड़ा दे दे, भरण करे, प्रेम रत्न के द्वारा उद्धव जी का भरण करना चाहते हैं भगवान। तो उद्धव जी ने विचार किया कि अवश्य हमारा परम हित करने के लिए श्री कृष्ण हमको भेज रहे हैं, जो हित मथुरा में नहीं हो सकता था वह भरण ब्रज में होगा। तो ऐसा आदरपूर्ण भाव था उद्धव जी का भगवान के प्रति, इसलिए पत्र की बात और भगवान के मौखिक संदेश की बात को बारंबार सोचते हुए जा रहे थे। प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान, श्रीमान उद्धव जो श्रीमान, श्रीमान का अर्थ है श्री से युक्त, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, क्योंकि भगवान का कार्य करने जा रहे हैं, ब्रजवासियों को समझाने जा रहे हैं, और भगवान का उतारा हुआ मुकुट, भगवान का वस्त्र और भगवान की माला, ये सब धारण किए थे। तो इतने सुंदर लग रहे थे जैसे द्वितीय भगवान ही जा रहे हैं ब्रज में, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी श्रीमान उद्धव कह रहे हैं, श्रीमान। मनुष्य की शोभा ऐसे तो होती ही है सब आभूषणों से, लेकिन जब भगवान की सेवा के लिए प्रस्तुत होता है, भगवान से प्रेम करता है, भक्ति करता है, तो उस व्यक्ति की शोभा बढ़ जाती है। ये सुखदेव गोस्वामी का शब्द है श्रीमान उद्धव। वे नंद ब्रज में पहुंचे चल करके, और जब नंद ब्रज में पहुंचे तो उस समय भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे, ठीक यही टाइम था। मैंने सोचा भी था कि सवेरे भगवान उनको भेज रहे हैं तो सवेरे की कथा होगी, पहुंचेंगे तो शाम करेंगे। तो उद्धव जी निम्नलोचते विभावसु, विभावसु भगवान सूर्य को और अग्निदेव को भी कहा जाता है, दोनों बहुत प्रकाशित हैं, इसलिए विभावसु का अर्थ है सूर्य। सूर्य निम्नलोचते जब डूबने जा रहे थे, अस्ताचल के निकट पहुंचे थे, तब पहुंचे, उस समय उद्धव जी का रथ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ब्रज में जब पहुंचे तो इतने पशु लौटे थे, लौट रहे थे वन से, गायें लौट रही थी और जल्दी जल्दी लौट रहे थे, अपने बछड़ों को, बच्चों को दूध पिलाने के लिए जल्दी जल्दी वन से लौट रहे थे। इस कारण से खुर रेणु भी उनके खुर से, पैर से इतनी धूलि उड़ रही कि धूलि के उड़ने से उद्धव जी का रथ दिखाई नहीं पड़ रहा। किसके द्वारा? किसके द्वारा दिखाई नहीं पड़ता था? ब्रजवासियों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ता था। और खुल रेणु भी ही क्षण नहीं आना, और क्यों आवृत था, क्यों नहीं दिखाई देता था, तो खुल रेणु भी। यहां ये अगर पूछा जाए कौन नहीं देख रहा था, ये सुखदेव गोस्वामी तो अपने भाव नेत्र से देख ही रहे हैं, लेकिन गांव के लोग देख नहीं पाए उद्धव जी को, कोई नहीं देख पाया, क्योंकि भगवान ने जो उनको संकेत किया था, सबसे पहले नंद बाबा से मिलना, उनको मेरा प्रणाम कहना और ये संदेश कहना और कहना, इसके बाद मां यशोदा से मिलना, और इनसे पूरी तरह से मिल करके इनको समझा करके तब श्री गोपीजनों से मिलना। तो उद्धव जी परम चतुर हैं, व्यवहार कुशल है, तो शाम को पहुंचे, पहले से प्लान कर लिए थे कि जब गायों की खुर से रज उड़ेगा उसी समय प्रवेश करूंगा, जिसे कोई दूसरा न देख पाए। और ये यद्यपि ब्रज में कभी गए नहीं थे, लेकिन नंद बाबा के घर का एड्रेस वगैरह भगवान से लिखवा लिए थे, गांव में किधर घर पड़ता है, नंद गांव में मैं जाऊंगा तो नंद बाबा का घर किधर है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम या बीच में कहां है, घर का आकार क्या है, किस तरह से है। तो भगवान ने बताया सबसे सुंदर भवन है, ऊंचे पर्वत पर है, इस तरह से लोकेशन बताया, तो वहां पहुंचे। छन्न यान, जो यान ढक गया था तो उद्धव जी कैसे नहीं ढकेंगे धूल धूल से। ब्रज में जब पहुंचे तो इनका ब्रजरज से अभिषेक हो रहा था, ये पहली कृपा तो ये थी, एक तो ब्रज की धूल और दूसरे परम पवित्र गौओं के खुर से उड़ी थी धूल। गोरज ऐसे ही सबसे बड़ा पवित्र चीज माना जाता, गाय की धूल। उद्धव जी चारों से धूल पड़ रही थी, गायों की धूल उड़ उड़ करके इनके मुकुट पर, माला पर, वस्त्र पर पड़ रही थी, और इसके बाद भी ज्यादा ज्यादा धूल उड़ी थी, इस कारण से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। क्षण नहीं आना, अतः प्रवेश करने में कोई देखा नहीं। सीधे नंद बाबा के जब दरवाजे पर पहुंचा रथ, तो उस समय नंद महाराज ने देखा उद्धव जी को, तो तुरंत खड़े हो गए और आकर के अगवानी किए, पशु नाम खुल रहे हैं। शाम के समय जब गौएं आती हैं चर करके वन से, जल्दी जल्दी चलती है, और जल्दी जल्दी चलने के कारण उनके पैर से खुर से धूली उड़ती है, खुर रेणु है, उससे छन्न आना। ब्रज वर्णन, पांच श्लोक में ब्रज का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। मन लगा है ना भगवान जिस धाम में रहते हैं, जहां के स्थान में, वहां की क्या शोभा है। ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्रज भगवान के बिछुड़ने से बिल्कुल हतश्री हो गया है, शोभा नष्ट हो गई, लेकिन श्री भगवान उद्धव जी को अपने वास्तविक ब्रज का दर्शन कराना चाहते थे, इसलिए भगवान की इस योग माया शक्ति से कुछ देर के लिए ब्रज बिल्कुल आनंदित है। कुछ देर के लिए क्या, जो नित्य उसका स्वरूप है उस रूप में हो गया, कोई शोक मोह आदि दिखाई नहीं पड़ रहा था। आप लोग पढ़ता के स्वयं समझेंगे, वासितार्थे विद्युद्धेर भीर नादितम सुष्मिभिर वृषय, सुष्मिभिर वृषय ही, सुष्मि का अर्थ है मतवाले, आनंदित, बहुत से नंदी थे ब्रज में, सांड थे, और वे परस्पर युद्धत भी युद्ध कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे कोई आश्वास लेकर के नहीं, वो एक दूसरे को परास्त करना चाहते थे, सिंह से था जैसे लड़ रहे थे। किस लिए लड़ रहे थे? वासितार थे, वासिता के लिए। वासिता कहते ऋतुमती गाय के लिए वे लड़ रहे थे। पहला बार सुखदेव जी कर रहे इस तरह उनको सुष्मी का अर्थ है मत, अर्थात आनंद में विभोर थे सांस परस्पर। तो ऐसे वृषों से नादितम वे सांस है हकड़ रहे थे, बोल रहे थे। तो यह शब्द बड़ा सुंदर था। ब्रज का पहला वर्णन है कि बैलों के द्वारा नादितम ब्रजम, नादित वासितार थे, वासिता के लिए ऋतुमती गाय के लिए वे परस्पर युद्ध कर रहे थे। पहला वर्णन है कि प्रचुर बैल थे, सांड थे ब्रज में। ब्रज की इसी में शोभा है। और दूसरा वर्णन कर रहे हैं धावंत भीश्च वाश्रा भी उदो भारे सवत्सकान, गौएं दौड़ रही थी, सांड युद्ध कर रहे थे तो उससे भी धूल उड़ रही थी और गौएं धावंती भी धावन कर रही थी। कहां धावन कर रही थी? सोवत्सकान, अपने अपने बछड़े के निकट दौड़ कर जा रहे थे। और अब इनका वर्णन भी है, वाश्रा कहते हैं। वाश्रा का अर्थ है जो गाय नया बच्चा दी है अभी तत्काल में, तो अपने बच्चे के लिए वो स्नेह से दौड़ती है चाटने के लिए, दूध पिलाने के लिए, इसको वाश्रा कहते हैं। तत्काल ब्याई हुई गाय को वाश्रा कहते हैं। तो अनेक वाश्राएं, अनेक गौएं थीं जो अपने अपने बच्चों के लिए दौड़ रही थी। उधो भार है, उनके थन बहुत बड़े बड़े थे, दूध से भरे हुए, फिर भी दौड़ रहे थे। इसका मतलब स्वस्थ थी सभी गौएं। उधो भार है, गौ का विशेषण है, जिनका उधह का अर्थ होता है थन, जिनका दूध से भरा हुआ थन भारी भारी था, फिर भी दौड़ रहे थे बच्चों के पास। इतस्ततो विलंघत भीर गो बच्चर मंडितम सीते, इतस्ततो इधर उधर जब बछड़े दूध पी लिए थे तो दूध पिए हुए बछड़े खूब विलंघन करते हैं, खूब दौड़ते हैं इधर से उधर, सीते और प्राय सभी बछड़े उजले थे, व्हाइट थे। सीते ही गोवत्स इतस्तत विलंघत भी मंडितम, तो सांडों के द्वारा मंडित, गौओं के द्वारा मंडित और इधर उधर खुदकते हुए भागते हुए गाय के बछड़ों से मंडित, ये है श्रृंगार ब्रज। ऐसा बछड़ा कोई भगवान ने नया नहीं देखा, जो बांध दिया गया है खूंटा पर चुपचाप और कसाई के समान सारा दूध निकाल देना, बछड़ों को पीने न देना, ऐसा दृश्य नहीं था ब्रज। इतस्तत विलंघत भी, तो दूध पीने के बाद सब इधर उधर फैल रहे थे। ये स्वभाव है बछड़ों का, इनके द्वारा मंडित। मंडित इस शब्द नादितम के बाद मंडितम, गौओं का नाद हो रहा था, अपने बच्चों के लिए बोल रहे थे, छोटे छोटे बछड़े बोल रहे थे और दूध पी लिए तो सब इधर उधर विलंघन कर रहे थे, दौड़ रहे थे। और गोदोह शब्दा भी रवम, गोदोह शब्द से अत्यंत सुंदर लग रहा था। गोदोह शब्द का क्या अर्थ है? गौओं के दुहने की आवाज घरर घरर, और दूसरी बात है गोदोहन में जो शब्द होता है देही गृणी ही बर्तन दो, ये बछड़े को पकड़ो, ये भर गया है पात्र, इसको ले जाओ, गृहाण इसको लो, इसको लो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको छोड़ दो, उनके बछड़ों के लिए, ये बछड़ा पकड़ो, बछड़ा पकड़ो, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, ये हो गया है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो इसको घोष कहा ही जाता है, जहां पर हमेशा घोष हो, आवाज हो, इसको घोष कहते हैं। तो कैसी आवाज? गोदोह आवाज, गोदोहन में आवाज। अनेक गौएं थी, अनेक दुहने वाले दुह रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत गौएं रहती हैं तो गोदोहन के समय बहुत व्यग्रता होती है, आवाज होती है और बहुत क्रिया होती है। श्रीधर स्वामी जी ने इसको लिखा है, इसको लो, इसको दो, दूध भर गया, इसको ले जाओ, ले उसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अब छोड़ दो छोड़ दो, इस तरह से बहुत शब्द हो रहे थे। बहुत सुंदर शब्द हो रहे थे ब्रह्मा जी, इसको गोदोह शब्द कहते हैं। गोदोह का अर्थ है गोदोहन काल और स्थान, और वहां पर जो शब्द हो रहा है वो है, और उन शब्दों से अभिनवम बहुत सुंदर आवाज हो रही थी। उन शब्दों से अभिनवम का यह अर्थ है अत्यंत सुंदर ढंग से नादित था वह ब्रज, नादित उपाधि जैसे कहा गया, और मंडितम गोदोह शब्द अभिनवम। और इसके साथ साथ कुछ लड़के वेणु नाम निःस्वने न चल बांसुरी बजाते रहते थे। भगवान जब ब्रज में हैं तो उनसे सीखे हैं, और अभी भी सखाओं को श्री कृष्ण के सान्निध्य का अनुभव होता है, उनका दर्शन प्राप्त होता रहता है। गोप सखाओं के लिए वियोग नहीं था कृष्ण का, ये मथुरा में जब थे तब भी ब्रज में वे गाय चराने में प्रकट रहते थे। केवल वियोग का दुख का अनुभव हुआ दो दो लोगों को, दो तरह के लोगों को, एक तो नंद बाबा जसोदा को और दूसरे श्री गोपियों को। गौओं को वियोग का अनुभव नहीं हुआ, भगवान साथ में जाते थे चराने के लिए और सखाओं के साथ खेलते रहते थे। अतः इनका वर्णन है कि ये सब बड़े सुखी थे। वेणु नाम निःस्वनेन च, वेणु की ध्वनि से ब्रज सुशोभित है। वेणु की आवाज, बांसुरी की आवाज एक अलग ही शोभा की बात है। और कोई बच्चा कब बांसुरी बजाता है, वेणु बजाता है? जब वह आनंद में होता है, सुख में होता है तो बजाता है। ये देखा गया है, गाड़ीवान भी गाड़ी हाँकते समय कब गाता है? जब वो सुख में होता है। जाता पिसते समय या ढेंकी चलाते समय पहले की स्त्रियां गाने लगती थी, तो गान दुख में नहीं होता है, सुख में होता है। काम हो रहा है, आनंद आता है तो गाने लगती थी। ऐसे व्यक्ति को अपने काम में रहे लेकिन काम के समय भी भगवान की भक्ति करे, भजन गावे, यही जीवन है। लेकिन अब के काम में क्या वो गाएगा? काम करना ही एक बहुत भारी काम है, परिश्रम है, तो उस परिश्रम में क्या गाएगा? क्या लड़के जाते हैं स्कूल तो रिक्शा पर गाते जाते हैं? नहीं गाते हैं। तो बस्ता का भार है, पढ़ना है, पहुंचना है, ये करना है, करना, ये कोई आनंद की लीला नहीं है, ये आनंद का काम है ही नहीं, तो गाए गावे क्या? लेकिन गोप सब गा रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी जब आदमी तभी बजाए जब निश्चिंत हो। चकार से कोई कोई नाचते थे, गोदोहन हो रहा है, कुछ लड़के नाचते हैं। सुकार से बताया जाता, और भी बाजे बजाए जाते थे जो उनके स्वभाव के अनुसार बाजे सुलभ होते थे, गांव के ही स्वर निर्मित ऐसे बाजों को बजाया करते थे और गाते रहते थे। इससे गोदोहन का जो शब्द है खीड़क, वहां पर बहुत बहुत सुंदर आवाज निकलती थी, ये अर्थ अभिरवा। गायंत भीष्ट कर्माणी शुभानी बल कृष्ण स्वलंकृता भी गोपी भी गोपश्च सुविराजित। और गोपियां संपूर्ण ब्रज में राम कृष्ण यो बल कृष्ण यो शुभानी कर्माणी गायंति भीष्ट। श्री बलराम और श्री कृष्ण के शुभानी कर्माणी गायंति भीष्ट, परम पवित्र परम शुभ लीलाओं को गा रही थी, उन शब्दों से यह ब्रज विराजित था। गायंत भीष्ट, ये ऊपर से इसका अनुय है कि गायंत भीष्ट गोपी भी गोपियों के गान से वह ब्रज अभिगम हो रहा था, अत्यंत रमणीय था। स्त्रियों का स्वभाव होता है गाना, तो स्त्रियां गाती रहती थी। कैसी स्त्रियां, यहां पर विशेष बात पर ध्यान देना चाहिए, स्वलंकृता भीर गोपी भी गोपैश्च। स्वलंकृत अत्यंत सुंदर श्रृंगार की हुई गोपियां गा रही थी भगवान कृष्ण और बलराम की लीला को। यह बल कृष्ण और कृष्ण और बलराम की लीला अर्थात कृष्ण की लीला, जिन लीलाओं में श्री बलराम जी साथ में थे, गोचारण की लीला विशेषकर, और भी माखन चोरी आदि की लीला, ये सब गाती रहती थी। गायंती भीष्ट, गाने वाली गोपियों के द्वारा सुविराजितम। तो गोपेश गोप भी गा रहे थे और गोपियां भी गा रही थी अपने अपने दल में, इससे वह ब्रज सुविराजित। ये ब्रज की शोभा है। क्या गाया जा रहा था, बल कृष्ण जो हो बलराम कृष्ण जो हो शुभानी कर्माणी, कृष्ण और बलराम के अत्यंत सुंदर लीलाओं को गा रहे, कर्म को गा रहे थे। सजी हुई गोपियां, अलंकृत गोपियां और अलंकृत गोप, इनके द्वारा सुविराजित। और घर घर में, सभी घरों में अग्नियर का तिथि गो विप्र पितृ देवार्चना मिलते हैं। अग्नि देवता, सूर्य देवता, अतिथि गो, गाय, ब्राह्मण, पितृ पितरगण और देवगण, इनकी पूजा से युक्त घर था। सभी घरों में भगवान सूर्य की पूजा की जा रही थी, अग्नि देवता की पूजा की जा रही थी। अग्नि देवता की पूजा का अर्थ है अग्नि में हवन किया जा रहा था, जहां तहां घर घर में। घर की इस तरह से शोभा होती है जिसमें अग्नि देवता की पूजा हो, भगवान सूर्य को जल देना, नमस्कार आदि, सूर्य के स्तोत्र का पाठ वगैरह सभी घरों में हो रहा था। अग्नि अर्क अतिथि, और घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत चल रहा था, उनका चरण धोना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, अतिथि सेवा हो रही थी। और गौओं की पूजा, गौओं को की पूजा का यहां अर्थ है कि सभी गौ गौएं चर करके आई थी, लेकिन फिर भी उनके लिए स्पेशल घास कुटी ये सब व्यवस्था की जाती थी। गौओं की पूजा का यही अर्थ, यानी ये केवल अर्थ नहीं कि गाय की आरती की जाए और बड़े गो भक्त लोग जुट करके खड़े होते हैं और गाय भूखी रहती है, ये पूजा नहीं है गाय की। गाय की पूजा का अर्थ जवस देना, गवत देना, ये सब दिए जा रहे थे, गाय की पूजा का ये अर्थ। और विप्रय ब्राह्मण की पूजा। ब्राह्मण की पूजा में मुख्य चीज है उनको भोजन देना। पहले के ब्राह्मण भगवान के भजन में रहते थे, वेद पाठ आदि का उच्चारण करने में। प्रायः वे तपस्या में रहते थे, खाने पर उनका ध्यान उतना नहीं रहता था। इसीलिए तपस्या में लगे हुए ऐसे भक्त ब्राह्मण को कोई खिलावे तो महापुण्य होता था। जब वर्णन मिलता है तो इतने ब्राह्मण भोजन कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। यह अर्थ नहीं है कि खा खा करके मर रहे थे, वास्तव में क्यों खिलाया जा रहा था, खिलाने वाले आखिर पूजा कर रहे हैं ना ब्राह्मण की, इतना ब्राह्मण को भोजन तो क्यों जोर दिया जाता था। इसलिए कि प्रायः वे निराहार रह करके भगवान के भजन में रहते थे, व्रत में रहते थे। तो ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराना अति पुण्य की बात है। तो ब्राह्मणों को भोजन आदि कराया जा रहा था और भोजन के साथ चाव दक्षिणा चा का अर्थ होता है और माने दक्षिणा और क्या है तो आगे धूप दीप च वहां च का प्रयोग है। तो इस तरह से घर घर में भगवान अग्नि देवता, सूर्य देवता और अतिथि देवता, गौ, ब्राह्मण, पितृ और देवता, पितरों का अर्चन हो रहा था। वे भी अपेक्षा रखते हैं कि हमारे वंश में जन्मा हुआ व्यक्ति हमारी कुछ सेवा करेगा। पितरों के निमित्त से कुछ चीज कराया जा रहा था, से पूजा पाठ जो भी है, देवताओं की स्तुति इत्यादि। देखिए श्लोक सामने है, पितर और देवता की पूजा घर घर में हो रही थी। आजकल के लोग तो इतने अनन्य हो गए कि हम कृष्ण को जानते हैं और कोई किसी को नहीं करते। देखिए पढ़िए, ब्रजवासी सभी भगवान सूर्य की, अग्नि देवता की, गाय की, ब्राह्मण की, पितर की और देवता की पूजा कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या दिया जा सकता है? नहीं शक्ति है कुछ करने की, तब तो महा अनन्य, उस पर भी ब्रह्मनिष्ठ हो गए, ध्यान के अलावा कुछ करना ही नहीं। ये सब बहाना है वास्तव, जीवन में जो करना जरूरी है वो करना चाहिए। सबके साथ संबंध है, पितरों के साथ, देवताओं के साथ, भगवान सूर्य के साथ, जिनके दिव्य आलोक में, प्रकाश में हम लोग जीते हैं, काम करते हैं। हमारा प्रत्येक दिन प्रारंभ होता है भगवान सूर्य के प्रकाश में, जो हमारे कर्मों के एक साक्षी भी हैं। कितना उपकारी है सूर्य, इस पर आदमी को विचार करना चाहिए। ऐसे सूर्य को नमस्कार करना भी आदमी के लिए भार लगता है। पूजा क्या करेगा, तो दीपक क्या दिखाएगा भगवान सूर्य को, और पूजा, केवल प्रणाम करना भी भार लगता है। सूर्य को अवश्य नमस्कार करना चाहिए। इस नमस्कार से अपने ऋण तो चुकता ही है, फायदा भी होता है, आंख की ज्योति बढ़ती है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। सूर्य के द्वारा ही एक त्रिसंध्या का विभाजन है, सवेरे जब सूर्य उगते हैं और सायं जब डूबते हैं और मध्य दिवस जब आकाश में ऊपर रहते हैं, तो त्रिसंध्या कहते। वही हमारे जीवन के अवधि को नापने वाले भी हैं कि कितना जिए, इतना दिन जिए, इतना वर्ष, इतना महीना, इसके बाद समाप्त हो जाते। उनसे सबका संबंध है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका संबंध सूर्य से नहीं है? लेकिन ऐसे सूर्य की पूजा लोग नहीं करते हैं, करनी चाहिए। हमारे यहां बिहार में सूर्य की पूजा का एक दिन है बहुत विशाल, जिसे छठ कहा जाता है। तो प्रायः स्त्रियां उस पूजा को करती हैं। और बिहार के लोग जहां भी हैं और यूपी के, वे करते हैं। ऐसे नहीं केवल बिहार में ही भगवान सूर्य प्रकाश देते हैं, सब जगह देते हैं, लेकिन जो प्रकट देवता है इनकी पूजा न करके जो छिपे हुए देवता है उनकी पूजा करते हैं। लेकिन कितना ज्ञान है इस विषय में, बिहार को धन्यवाद है कि जहां लोग सूर्य के उपकार को समझते हैं, पूजा करते हैं। पर यह दैनिक पूजा होनी चाहिए, प्रतिदिन सूर्य भगवान को प्रणाम करना और जल देना और भी दीपक अगरबत्ती फूल आदि अर्पण करना। यद्यपि वे सारे जगत को प्रकाश देते हैं, उनको किसी के द्वारा अर्पित प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी दीपक दिखाने पर भगवान सूर्य मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमको कुछ दे रहा है। दीपक की आवश्यकता दूसरे के लिए है ना, कि भाई जाइए भोर में उठकर कहीं ठोकर न लग जाए तो टायर से जला देना, दीपक जला देना। सूर्य को क्या ठोकर लगेगा और क्या कमी है उनको प्रकाश की, फिर भी सूर्य को दीपक दिखाया जाता है और उस दीपक को अपनी पूजा मान लेते हैं। ये तो केवल भाव की बात है, भाव से ही देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान सूर्य, भगवान श्री कृष्ण को क्या आवश्यकता है कि उनको बहुत भोग लगाया जाए, रत्न अर्पित की जाए, माला अर्पित की जाए, से क्या उनका होता है, लेकिन फिर भी वे इसको ग्रहण करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो यम योमे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मा, भगवान कहते हैं मैं स्वीकार करता हूं। तुच्छ चीजें हैं लेकिन फिर भी भगवान भाव के भूखे हैं, भाव से कोई देता है तो उसको स्वीकार करते हैं, अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। इसी प्रकार देवता भी, भगवान सूर्य, भगवान अग्निदेव, इनका सत्कार किया जाता है तो लोग स्वीकार करते हैं पूजा। तो ब्रज के घर घर में सूर्य, अग्नि, अतिथि, गाय, विप्र, पीतल और देवता की पूजा चल रही थी। पर कीर्तन किसका हो रहा था? बल कृष्ण यो सुभानी कर्माणी। पूजा चाहे किसी की हो रही हो, कीर्तन भगवान का होता था। इधर एक बहुत सुंदर बात गाते थे, चला सखी हरि कीर्तन गावे देवी के द्वारवा, हे सखी चलो, कहां चले तो देवी के द्वार में, देवी द्वार, माता दुर्गा जी के मंदिर में चले, वहां जाकर क्या करेंगे तो हरि कीर्तन गाएंगे, कृष्ण का जस गाएंगे, हरि माने कृष्ण भगवान, भगवान का कीर्तन गाएंगे। घर में फुर्सत नहीं है, झंझट है, क्या क्या चिंता है, चलो भगवान के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में भगवान का कीर्तन गाएंगे। ये तो प्रसिद्ध बात है ना, चलो सखी हरि कीर्तन गावे देवी के द्वारवा, यानी कि देवी के दरबार में गए, दुर्गा जी के मंदिर में रात भर जागरण करके हाय हुई गाते रहे, ये ठीक नहीं है, कीर्तन गाना चाहिए। देवी जागरण करे देवी के मंदिर में, लेकिन पूरा रात भगवान का कीर्तन गाना चाहिए, यही जीव का स्वभाव है। यहां भी आप देख रहे हैं लोग कई देवता आदि की पूजा कर रहे हैं, लेकिन गायन तो भीष्ट कर्माणि सुभानी बल कृष्ण, गाने में स्त्रियों का स्थान है, लेकिन इसके साथ साथ पुरुष भी गाते हैं, जहां हम हों गा ही रहे हैं, ये अर्थ है। विशेष स्वर है श्री गोपीजनों का, वे गाती। धूप दीपैश्च मालिश्च गोपावासै मनोरमं, ब्रजमंडल और भी अधिक सुंदर लग रहा है, गोप गोपी आदि तो हैं ही, गा रहे हैं भगवान की लीला, और घर घर में धूप और दीप जले। धूप, धूप का अर्थ है धुआं पैदा किया जा रहा है, अगरबत्ती आदि जलाई गई, फर्स्ट क्लास के अगरू जलाए गए हैं, तो धुएं निकल रहे हैं, सुगंधित धुआं, और दीपश्च, घर घर में दहली पर सर्वत्र दीपक जले, माल्यश्च और फूल बिखेरे गए हैं, मालाएं लगाई गई हैं तोरण पर बंदनवार आदि सब, गोपावासय मनोरम, इस प्रकार से गोपों के घर से ब्रजमंडल बहुत सुंदर लग रहा है, तो ब्रज बहुत सुंदर लग रहा है। नंदगांव मनोरमम, मनोरमम का अर्थ होता है कि जत्र मन रमति, जहां मन रम जाए, मन को आनंद दे, वो है मनोरम, मन को रमा देने वाला है ब्रज। खासकर के उसमें गोपों के जो आवास हैं बड़े सुंदर हैं, और वहां धूप दीप माल आदि सजाए गए। सर्वतः पुष्पित बनम, सर्वतः पुष्पित बनम, और ब्रज में जो भी वन है, जो भी वृक्षावली है, सब पुष्प से भरे हुए हैं। सर्वतः पुष्पित बनम, सब जगह फूल ही फूल है, और इसके द्वारा अपने आप समझ लेना चाहिए फलम च, फल फूल और फल से लदा हुआ है ब्रज। द्विजाल कुल नादितम, और वृक्ष कैसे हैं, पेड़ पौधे सब कैसे हैं, उस पर पक्षी भौंरे आदि, पक्षी और भौंरों के समूह का नाद हो रहा है, सब अपने अपने स्वर में गा रहे हैं। यह निश्चित है कि सभी श्री कृष्ण की लीला को ही गाते हैं, चाहे कोयल हो या मयूर हो, कोई भी पक्षी गा रहे हैं, और द्विज भौंरे तो भगवान कृष्ण की लीला को ही गा रहे हैं अपने शब्दों में। जैसे यहां कोई संस्कृत में भगवान का गुण गाने लगे तो संस्कृत जो नहीं जानता है वो नहीं समझेगा कि क्या गाया जा रहा है। जैसे हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि पक्षी कौन सी भाषा में भगवान का जस गा रहा है, भौंरा कैसे भगवान का जस गा रहा है, लेकिन वो जस गाते हैं। इसको भागवत में कहा गया है 15वें अध्याय में, भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से बलराम जी से कहे हैं कि भौंरे आपको छिपा हुआ देखकर भी पहचान गए हैं, और आपका संग नहीं छोड़ते हैं, आपकी वनमाला पर बैठते हैं और आपके साथ चलते हैं। प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्य, ये आपके पार्षदों में सबसे श्रेष्ठ पार्षद हैं, और भौंरा बनकर के आपका संग कर रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, आपका जस गाते हुए। अनुपदम, प्रत्येक क्षण आपका संग करते हैं, चलते हैं साथ। तो सर्वतः पुष्पित बनम द्विजाल कुल नादितम, भौंरों और पक्षियों के स्वर से नादित है, वन का वर्णन है। नादित होने से ही केवल अच्छा नहीं है, नादित का अर्थ है कि ब्रह्म शब्द, चिन्मय शब्द, भगवान के कीर्तन से, जस गान से मुखरित है। हंस कारंडवा किरण पद्म संदेष्ट मंदितम, और ब्रज में बहुत सरोवर हैं नंदगांव के आसपास, वर्णन चल रहा है, तो सरोवरों से भरा हुआ है ब्रज। और सरोवर कैसे हैं, कमलों के समूह से भरे हुए हैं, पद्म संदेष्ट मंदितम, पद्म संदेह, कमल के फूल तो हैं ही, संड कहते हैं कमल के नाल को, सरोवरों में कमल गह गह खिले हुए हैं, कमलों से भरे हुए हैं, और उन सरोवरों में जलचर जलविहारी पक्षी हैं वे कूक रहे हैं। हंस कारंडव आकिल, हंस और कारंडव जल में ही रहते हैं पक्षी, जल में तैरते हैं, डूबते हैं, और कमल के फूल पर बैठते हैं हंस और कारण पक्षी, ये भरे पड़े हैं, ये गाते रहते हैं सरोवरों के किनारे, सरोवरों में और कमल भरे हुए हैं। इस तरह से ये ब्रज का वर्णन किया गया है। थोड़े में श्री सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन किए, सुविराजितम मंडितम अभिरवम, सुविराजितम गोपावासर मनोरमम पद्म संजय संदर्श मंडितम मनोरम मंडित सुविराजित और नादित ब्रज नादित है वहां शब्द है लेकिन सारे शब्द भगवान के जस से भरे हैं यही शब्द की शोभा है और ऐसे शब्द से युक्त जो स्थान है वह मंडित धन्य है ऐसे ब्रज में श्री उद्धव जी ने प्रवेश किया तो नंद बाबा से उद्धव जी की भेंट तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नन्दः प्रीतः परिस्वज्य वासुदेव धियार्चयात् तमागतम समागम्य नंद महाराज ने देखा उद्धव जी को कि हमारे घर दरवाजे पर आ गए दरवाजे मतलब बैठक जहां पुरुष वर्ग बैठते हैं उसको बैठक कहते हैं इधर हम लोग दलान कहते थे लेकिन अब दलान का नाम निशान खत्म हो गया और सब स्त्री पुर ही बन गया सब अंतःपुर ही बन गया बाहरी कोई घर द्वार रहता नहीं बाहरी कोई घर है तो वहां कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति पड़े हैं और इधर कुत्ते पड़े रहते हैं बस कोई अतिथि आवे तो पता भी नहीं चलेगा कि कहां जाएं और वहां रहिए तो दिन भर रह ही जाएंगे कोई पूछने भी नहीं आएगा कि कौन आया अब सब रूप बदल गया लेकिन हम लोग देखे हैं इतने सुंदर सुंदर बड़े बड़े दालान होते थे वहां पर कोई अतिथि जाए ब्राह्मण जाए तो उसका स्वागत होता था तो इसे समझ सकते हैं कि नंद बैठक कितना भव्य रहा होगा वहां पर जब उद्धव जी पहुंचे तो नंद बाबा ने देखा पहचान लिया जब मथुरा गए थे तो उस समय उद्धव जी को देखे थे नाम भी जानते थे तो पहचान गए और ये भी देखे कि कृष्ण का यही सखा है कृष्ण के साथ निरंतर रहते थे इसलिए कृष्णानुचरण कहा है कृष्ण के साथ है सदा रहने वाला कृष्ण का अनुचर देखे तो बहुत प्रसन्न हो गए उनको आगत दुआ गए तो नंद महाराज उनका स्वागत के समागम्य सम आगम्य उनके पास प्यार से आए क्योंकि कृष्ण से अनुचरण कृष्ण के अनुचर है उद्धव जी इस कारण से नंद बाबा के वैसे प्रिय हैं जैसे कृष्ण प्रियम तो अपने प्रिय उद्धव जी को आया हुआ देखकर नंद प्रीत नंद बाबा प्रीत परम सुखी हो गए प्रसन्न हो गए अर्थ प्रसन्न हो गए और परिस्वज्य उनका आलिंगन किया जैसे कृष्ण का आलिंगन करते हैं वैसे उद्धव जी का आलिंगन किए और वासुदेव धिया अर्चयत तो साक्षात भगवान विष्णु समझ करके उनका आदर किए जैसे भगवान की पूजा करते हैं इस भाव से नंद महाराज ने कृष्णानुचर उद्धव जी की पूजा किया सम्मान किया अर्चयत बहुत आदर किया कुशल समाचार आदि पूछा सब तरह से बहुत प्रसन्न हुए नंद बाबा क्योंकि नंद बाबा कृष्ण के विरह में दग्ध थे दुखी थे लेकिन उद्धव जी को आया हुआ जानकर बहुत देख करके बहुत प्रसन्न हुए डूबते हुए व्यक्ति को जैसे कुछ आधार मिल जाए तो उद्धव जी कृष्ण के अनुचर हैं वे आए हैं तो इससे यह भी अनुमान किया जा सकता है कि कृष्ण भी आएगा यह कम से कम कृष्ण भेजा है तो याद तो किया है इस बात को सोच करके नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए, उनकी पूजा की। यद्यपि नंद बाबा के घर में कई दिन से भोजन नहीं बना था, कृष्ण जब से ब्रज छोड़ करके गए थे नंद बाबा नहीं के बराबर खाए थे, खाते नहीं थे, घर में भोजन बनता ही नहीं था। किचन में रसोई घर में सब मकड़ा जाल लगाए थे, कोई परिष्कार नहीं, सफाई नहीं, कुछ नहीं था। कभी भोजन बने रसोई गृह में तब ना उसकी सफाई हो, भोजन तो बनता ही नहीं था। लेकिन जब उद्धव जी आए तो नंद बाबा ने सोचा कि मथुरा से यहां आया है, इसे अवश्य भूख लगी होगी, तो उन्होंने परम अन्न से भोजन कराया। परमान्न कहते हैं दूध में चावल पकाया गया, दूध में बहुत सुंदर चावल था, उसको पकाया गया, अर्थात केवल खीर बनाया गया। घर में तो दूध था ही और चावल उसी को पकाया गया, इसको परमान्न कहते हैं, परम अन्न, सबसे श्रेष्ठ भोजन यही है। जिस भोजन का संपर्क दूध से हो जाए, दही से हो जाए, घी से हो जाए, तब वो ठीक है। आज के युग में मनुष्यों का कितना दुर्भाग्य हो गया कि भोजन में इन सब चीजों का संपर्क होना असंभव सा होता जा रहा है। उद्धव जी को परम अन्न से परमान्न भोजित भोजन कराया गया, भोजन कर दिया संविष्टम, और इसके बाद वे लेटे, लेटने का अर्थ है सोए नहीं, ऐसे लेट गए। कशिपौ सुखम, कशिपौ सुंदर बेड था जिस पर कृष्ण सोते थे, उस पर उनका सखा सोया, सुंदर बेल पर, कशिप पर, पलंग पर लेटे, सुखम सुख से। और जब गत श्रमम, उनका श्रम चला गया, पर ये पृछत पाद संवाहना, नंद बाबा ने अपने कुछ सेवकों को लगाया जो उद्धव जी का पाद संवाहन आदि किए। नंद बाबा आदि पैर छूते तो उद्धव जी ग्लानिस में गल जाते हैं। ऐसे अगर पढ़ेंगे तो लगेगा कि नंद बाबा ने पाद संवाहन किया, मसाज की, लेकिन यह बात नहीं। सेवकों द्वारा उन्होंने उद्धव जी का पाद संवाहन आदि कराया। इस तरह से उद्धव जी का जब परिश्रम चला गया, थकावट चली गई, तब नंद बाबा उनसे श्री कृष्ण के विषय में पूछ रहे हैं। नंद बाबा के द्वारा कृष्ण कथा, तो सबसे पहले नंद बाबा कृष्ण के विषय में न पूछ करके पहले वसुदेव जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसलिए कि अनिष्ट की आशंका होती है प्रिय में, तो ऐसे पहले दूसरे का समाचार पूछे। जब वसुदेव जी सुखी होंगे तो कृष्ण भी जरूर सुखी होगा, तो पूछ रहे हैं। कचिदंग महाभाग सखा नह सूर नंदन आस्ते कुशल्य पत्या देर जुक्तो मुक्त सुहृदृत। ही महाभाग, हे महाभाग्यशाली उद्धव, वास्तव में तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है, तुमको कृष्ण का संग मिला है। हम तो परम अभागे हैं, इतना दिन भगवान ने संग दिया कृष्ण का और अब संग छूट गया, तो अपने को महा अभागा कह रहे हैं और उद्धव जी को महाभाग्यवान संबोधन। हे महाभाग, भाग का अर्थ होता है सौभाग्य, धन, महा सौभाग्यवान। हे महाभाग्यवान उद्धव, न सखा, हमारे सखा मित्र, हमारे भाई सूर नंदन, सूर के पुत्र श्री वसुदेव जी कुशली आस्ते कचित कुशल से है ना, जब कुशल से युक्त हो उसको कुशली कहें, कुशली आस्ते वसुदेव जी कुशल से है ना, अपने पुत्र आदि से युक्त है ना, इस समय तो अपने पुत्र आदि से युक्त हो गए हैं, क्योंकि बहुत से पुत्र हैं वसुदेव जी के, तो पुत्र से युक्त हो गए हैं, तो एक अर्थ तो है कि श्री बलराम और पुत्रों से युक्त हो गए हैं। कृष्ण उनके पुत्र हैं इस बात को नहीं मानते हैं नंद बाबा, जानते ही नहीं है कृष्ण उनके पुत्र, तो अपत्यादे ही युक्त, अपत्यादि से युक्त हैं। जब व्यक्ति अपने परिवार के सब लोगों से मिलता है, सभी साथ में रहते हैं, तो यह एक सुख है, तो अपने अपत्य पुत्र आदि से युक्त हैं और मुक्त सुहृदवृत्त, इस समय वे सभी विपत्तियों से मुक्त हो गए हैं, कारागृह से भी मुक्त हो गए, बहुत खुशी की बात है। पहले वे कारागृह में बिताए थे, जेल में बिताए थे अपनी पत्नी के साथ, देवकी जी के साथ, तो अपने सुहृदों के साथ वे हैं ना और मुक्त हैं, अपने परिवार के पुत्र आदि से युक्त हैं, पत्नियां आदि भी उनके साथ में है ना। एक समय ऐसा था कि वसुदेव जी की पत्नियां भी उनसे दूर रहती थी डर करके कि कंस उनका वध करेगा, उनके गर्भ का वध करेगा। देवकी के 6 पुत्रों की हत्या किया कंस, तो इस भय से वसुदेव जी ने अक्रूर जी के द्वारा अपनी पत्नियों को इधर उधर कर दिया। तो रोहिणी जी जो बलराम जी की मां बनी, वे नंद बाबा के घर भेजी गई थी, और अन्य पत्नियों को अन्य जगह अपने संबंधियों के यहां भेजना पड़ा था। तो एक समय ऐसा था कि वसुदेव जी अपनी पत्नियों के साथ नहीं थे, सब बच्चे भी नहीं थे, भय से इधर उधर छिपाना पड़ा। तो जिसका बेटा दूर रह रहा हो, कहां खाएगा, क्या पिएगा, कैसे देगा, बड़ी चिंता की बात है ना। तो अब वे अपने पुत्रों से युक्त हो गए हैं, अपने सुहृद संबंधियों से युक्त हो गए हैं, सब इधर उधर से आ गए हैं, तो इस अब वे कुशली आस्ते कुशल से है ना, तो सबसे बड़ा कुशल तो यह है कि कंस मर गया, यही भारी कुशल है। दिष्टया कंसो हतः पाप, पाप स्वरूप महापापी कंस मारा गया, ये बड़े खुशी की बात है। दिष्टया, दिष्टया मैंने खुशी की बात, आनंद की बात। पाप कंस हतः, कोई ये कहे कि कृष्ण ने मारा कंस को, ऐसा मान ही नहीं रहे नंद बाबा, कहते नहीं नहीं, स्वयं पाप माना, अपने पाप से ही वो पापी मर गया, मारा गया। अभी भी कृष्ण के प्रति इतना सद्भाव है नंद बाबा का, कृष्ण ने नहीं मारा, तो भगवान ने उसको निमित्त बना करके और मार दिया कंस को। इतनी शुभ भावना है कि हमारा बेटा कहे को किसी की हत्या करने जाए। पापी कंस अपने पाप से ही मर गया, स्वयं पापमना हतः, तो सुने थे ही, जिस दिन कंस मारा गया तो नंद बाबा भी वहीं थे, रंगशाला में थे, देखे थे, तो सांप कृष्ण ने मारा, पटक दिया ऊंचे मंच से, उसके छाती पर कूद पड़े, तो मरा इस तरह से। लेकिन नंद बाबा मान रहे हैं कि 11 वर्ष का लड़का कूदेगा वो मरेगा, उस साला अपने पाप से मर गया, ये अर्थ है। कृष्ण के कूदने से नहीं मरा, कोई महापापी व्यक्ति होता है तो पाप ही उसको खा जाता है, वो मर गया। यही सबसे कुशल का मूल है। जब मर गया कंस तो निश्चित ही वसुदेव जी अब सुखी होंगे। साधूनाम धर्मशीला नाम जदूनाम दृष्टि यह सदा, यह कंस पापी दुरात्मा पापी कंस जादवों से सज्जनों से, जादव कहीं विशेषा है, साधु नाम वास्तव में नंद बाबा कह रहे हैं कि मथुरा के जादव बड़े सुशील हैं, सदाचारी हैं और धर्मशीला नाम और धर्मशील हैं, उनका शील स्वभाव अत्यंत उत्तम है, धार्मिक है। और ऐसे जादवों से जो पापी कंस सदा द्वेष्टि, सब समय द्वेष करता था, केवल देवकी वसुदेव के पुत्रों की ही हत्या नहीं किया था, समस्त जादवों के धन को छीना था, उनके घर को छीना था, और वे लोग डर करके रात में जैसे तैसे देश छोड़कर भाग गए, बहुत दुख में दिन बिताए। तो जब भगवान मथुरा में आए और कंस का वध कर दिए और उसके स्वजनों का, इसके बाद तब सब जादव आए, भगवान उनको बुलाए मथुरा में पुनः। तो कंस सदा द्वेष करता था, क्यों द्वेष करता था, उसको पता चल गया था कि ये सारे जादव देवता हैं और आए हैं दैत्यों का विनाश करने के लिए, जादव बन बन करके सब जन्म लिए, उसको पता लग गया था। नारद जी ने बताया था कि जितने जादव हैं सब देवता हैं, सर्वे वही देवता प्राय उभयोरपि भारत है, दोनों वंश में, नंद वंश में और वसुदेव वंश में जो भी जन्म लिए हैं संबंधी हैं, ये सब देवता हैं। और देवता बैरी हैं, देवताओं से बैर करते हैं दैत्य लोग। और अपने विषय में भी सुना था कि मैं कौन हूं, तो मैं कोई मनुष्य नहीं हूं, अपने विषय में सुन लिया है कि मैं भी आतंकवादी के वंश में जन्मा हुआ था पहले, अपने विषय में सुना था। तो उस जादव नाम सुनते ही उसको द्वेष था, जैसे इस समय कुछ लोगों को हिंदू शब्द से ही चिन्ह है, इस तरह की बात कि मैं कोई मनुष्य नहीं हूं और जादव भी नहीं हूं, मैं दैत्य था पहले, कलनेमी नाम का दैत्य था, दानव था और हमको मारा गया था देवासुर संग्राम में, समुद्र के किनारे समुद्र मंथन के समय हमको मारा था। किसने मारा था? विष्णु ने मारा था, और विष्णु फिर वही जदुवंश में जन्म लेने वाला क्या है, ले चुका। तो जन्म लेने से पहले बैर करता था और जन्म लेने के बाद भी सबसे बैर किया, सदा सदा दृष्टि, सब समय द्वेष करता है। तो ऐसा कंस मर गया, बड़े सौभाग्य की बात, बहुत अच्छा हुआ मर गया। कृष्ण का समाचार पूछना है, मूल वह विषय है, लेकिन नंद बाबा इस तरह से पूछ रहे थे मधुरे समापेत, सबसे पहले अन्य बात पूछ करके और मधुर से समाप्त करना चाहिए। कृष्ण का समाचार पूछेंगे, लेकिन पहले शंका है कहीं कोई अकुशल न हो, इसलिए पहले नहीं पूछ रहे। इसके बाद रहा नहीं गया, अब कृष्ण के विषय में पूछते हैं। वसुदेव जी कुशल से हैं ना, उनके सारे संबंधी कुशल से हैं ना, उनके पुत्र आदि सब कुशल से हैं, पत्नियां कुशल से हैं, सुहृद बंधु बांधव विवाह के द्वारा जिनसे संबंध किया गया है उनको सुहृद कहते हैं। दो तरह के संबंधी होते हैं, एक तो परिवार के अपने देह के संबंधी और दूसरे संबंधी होते हैं जो विवाह आदि द्वारा संबंध किए जाते हैं। दो प्रकार के संबंधी, जैसे भाई भाई चचेरा भाई भतीजा आदि ये सब देह के संबंध हैं और बहनोई साले साले मतलब पत्नी के भाई आदि ये सब संबंध द्वारा प्राप्त होते हैं। तो सब कुशल से है ना, वसुदेव जी सबके साथ कुशल से है ना, ये पूछ करके और सर्वशेष में अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे भगवान कृष्ण के विषय में पूछ रहे हैं। अपि स्मरति न कृष्ण मातरम सुहृद सखी गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरे। उनको रोकिए बात न करें, बाहर बात कर रहे हैं, शांति से बात करूं। अपि स्मरति न कृष्ण, हे उद्धव कृष्ण क्या हम लोगों का कभी स्मरण करता है, हमारी याद करता है? पहले समान रूप से बोले न असमान, कृष्ण क्या हम लोगों की याद करता है? तो फिर अपना नाम नहीं रख करके सबसे पूछ रहे हैं। नंद बाबा का ये भाव है कि कृष्ण के विरह में मैं जी गया, इसलिए कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम तो नहीं, मैं कठोर हृदय का। लेकिन क्या कृष्ण मातरम स्मरति, क्या वो अपनी मां का यशोदा का स्मरण करता है? हमारा स्मरण न करे ये स्वाभाविक है, दैन्य है, सहज दैन्य दीनता। लेकिन क्या वो कभी अपने मां का स्मरण करता है? मातरम सुहृद, अपने सुहृदों का, अपने मित्रों का कभी स्मरण करता है? अपने सुहृद का अर्थ है और भी जो संबंधी हैं, क्या उनका स्मरण करता है? सखी और जिनके साथ वो खेला है, खाया है, गाय चराया है, क्या उन सखाओं का, मित्रों का कभी स्मरण करता है? फिर पूछ रहे हैं गोपान और गोपों का, अन्य बड़े गोप चाहे सखा आदि से अतिरिक्त और गोप जो हैं उनका स्मरण करता है? क्या कभी अपने ब्रज का स्मरण करता है? चात्मनाथम, जिसका रक्षक स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण ने रक्षा किया है अब तक, तो वह कृष्ण क्या अपने ब्रज का स्मरण करता है? कभी उसको ये याद आती है, कभी बातचीत करता है कि ब्रज मेरा है और मैं ही रक्षक हूं? क्या कभी ये बात कहा है? और गावो, जिन गौओं को पोसा है, चराया है, क्या उन गायों का कभी स्मरण करता है? और वृंदावनम, वृंदावन का, जिस वन में विविध लीला किया, गौएं चराया, रास विहार किया, खेला, तो क्या उस वृंदावन को कभी याद करता है? सबके अंत में पूछ रहे हैं जिस पर्वत से वो बहुत प्रेम करता था, जिसको उसने अपने करकमल पर उठाया था, तो क्या गोवर्धन की कभी याद करता है? केवल स्मरण के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, एक एक वस्तु का नाम लेकर के। मातर सुहृद सखीन गोपान ब्रजम आत्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम, गिरिम का अर्थ है गोवर्धन पर्वत। क्या कभी स्मरण करता है? वैसे नह शब्द जो उसने उन्होंने कहा असमान, तो उसमें अपने आप को भी सम्मिलित कर ही लिए, लेकिन श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नंद बाबा ये सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण के स्मृति का विषय नहीं बन सकता, मैं तो कृष्ण की कोई सेवा नहीं किया, बल्कि कृष्ण से सेवा कराया, उसको गाय चराने के लिए भेजता था। अरे जसोदा ने तो बहुत सेवा किया, प्रेम किया कृष्ण से, तो जसोदा की, सुहृदों की, सखाओं की, गोपों की और आत्मनाथ ब्रज की, गौओं की, वृंदावन की और गिरिराज की, क्या उसे स्मृति आती है? कभी वार्ता में नाम बोलता है, चलाता है, मतलब कृष्ण के बिना ये सब सुने हो गए, तो इस प्रकार नंद बाबा कृष्ण की मानसिक स्थिति का वर्णन पूछ रहे हैं, क्या हम लोगों की कभी याद करता है? याद करने का मतलब है कि कभी यहां आने की चर्चा करता है कि आएगा मथुरा से? तो फिर कह रहे हैं यदि कृष्ण कभी आएगा, अपि आयास्यति गोविंद स्वजनान सकृदीक्षितु, अपने जनों को अपने मां को अपनी सखाओं को और वृंदावन के पशुओं पक्षियों को देखने कभी आएगा, सकृदीक्षितु यदि आयास्यति यदि देखने के लिए आएगा, तो मैं उसका सुंदर मुख देखूंगा। हमको भी दूसरा रुमाल नहीं, अति आयास्यति गोविंद स्वजनान सकृदीक्षितु परहि द्रक्ष्याम तद वक्तृ सुनसो सुस्मित क्षण। सकृत का अर्थ होता है एक बार, यदि एक बार कृष्ण आ जाएगा ब्रज में, कभी आएगा, क्यों आएगा, अगर ये पूछा जाए नंद बाबा से, कहते हैं स्वजनान इक्षितु, स्वजनों का दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए कभी वृंदावन में आएगा, तरही उस समय जब आएगा तो उस समय तब वक्त्रम उसका मुख मैं देखूंगा। कैसा मुख है? सुन सब, कृष्ण की नासिका बहुत सुंदर है, उसकी नाक बहुत सुंदर है और ऐसी सुंदर नाक से युक्त मुख है, सुस्मित क्षण, और जिसका मुख सब समय परम सुंदर स्मित से मुस्कान से युक्त रहता है, तथा जिस मुख में आंखें बड़ी सुंदर हैं, बहुत सुंदर देखता है, बहुत सुंदर मुस्कुराता है, ऐसे मुस्कुराहट से और कृपा भरी चितवन से युक्त मुख को मैं उसी समय देखूंगा अगर आएगा तो। क्योंकि देखने की इतनी उत्कंठा है तो बाबा से पूछा जा सकता है कि आप ही मथुरा क्यों नहीं चले जाते हैं, वहीं से देखकर आ जाइएगा। यदि शब्द लगा करके नंद बाबा कहते हैं कि हमको विश्वास है वो आएगा, और जब उसने कहा है कि बाबा मैं आऊंगा, अपने स्वजनों को मतलब वसुदेव देवकी आदि को सुखी करके अब मैं आऊंगा, भगवान ने कहा था, कंस का वध करने के बाद नंद बाबा से एकांत में मिले थे वे, अब कहे थे कि मैं आऊंगा। उद्धव मुझे विश्वास है कृष्ण अवश्य आए, इसी कारण से मैं जी रहा हूं, और मैं कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकता। जब वो कहां है आने के लिए तो आएगा, और यही आने पर मैं उसका मुख देखूंगा। कैसे जानते हैं कि कृष्ण आएगा? नंद बाबा कृष्ण के पूर्व में की गई लीलाओं की याद करते हैं, कि हम ब्रजवासियों पर जब जब विपत्ति आएगी कृष्ण हमारी रक्षा की था, इस कर्म से हम विश्वास करते हैं तू आएगा। उन्हीं लीलाओं की याद करते हैं। दावाग्नेर्बात वर्षा च वृष सर्प च रक्षिता दुरत्येभ्यो मृत्युभ्य कृष्णेन सुमहात्मना। दावाग्नि से इस वृंदावन में दो बार आग लगी थी, वन में आग लगी थी भयंकर उससे, और बात वर्षा च बहुत जोर का तूफान आया था और वर्षा हो रही थी, तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर के हम लोगों की रक्षा की। वृष सर्पच अरिष्टासुर से बच्चासुर से अरिष्टासुर से और सर्पच कालिये जैसे भयंकर सर्प से हम लोगों को उसने बचाया। रक्षिता दुरत्य मृत्यु भी दुस्तरणीय मृत्यु से ऐसी ऐसी मृत्युएं आई, जो संकट थे उनको नंद बाबा मृत्यु कह रहे हैं। यदि कृष्ण नहीं होता यहां तो हमारी मृत्यु हो गई होती सभी ब्रजवासियों की, जिसको टालना बड़ा कठिन था, दुरत्य था ऐसे संकटों से कृष्ण ने हमारी रक्षा की। कृष्ण से हमारी रक्षा हुई, और कृष्ण को कह रहे सुमहात्मा है, कृष्ण सुमहात्मा है, महान मन है, महान हृदय है कृष्ण का। यहाँ अर्थ है परम कृपालु, परम दयावान, हमारे दुख को जब उसने देखा। और विशेष करके अपने विषय में कह रहे हैं, सर्पच सर्प से दो बार रक्षा किए, कालिए से और एक सर्प जो अंबिकावन में पकड़ लिया था नारद जी को अजगर, उसने तो नंद बाबा को निगल लिया था और इतना तक शरीर चला गया था सर्प के भीतर, लेकिन कृष्ण आए अपने चरण कमल से सर्प को छू दिए तो तत्काल मुक्त हो गया और नंद बाबा को छोड़ दिया। तो उसकी याद कर रहे हैं, मेरे सर्पाच रक्षिता है, सुमहात्मा श्री कृष्ण सुष्ठु महात्मा है। महान आत्मा उसी का है जिसके हृदय में दया हो, कृपा हो, सुमहात्मा परम कृपालु श्री कृष्ण के द्वारा हम सबकी रक्षा हुए। स्मरतान कृष्ण वीर जाड़ी बीला पांग निरीक्षिता निरीक्षितम हसितम भाषितम चांग सर्वान्न शिथिला क्रिया। उद्धव जी से बात हो रही है, शाम के समय रात्रि के समय वे भोजन करके लेटे और नंद बाबा उनसे वसुदेव जी का कृष्ण का समाचार पूछ रहे हैं। और कृष्ण के समाचार में मुख्य बात यही कहते हैं, यदि वो ब्रज में आएगा तो मैं उसका मुख देखूंगा। और उद्धव अब हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है कि मैं जी पाऊंगा कृष्ण के बिना, लेकिन यही लालसा है कि मैं उसका मुख देख करके ही मारूं, तो इसीलिए यही अपेक्षा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब मेरा जीवन संभव नहीं है क्योंकि बहुत दिन से अन्न छूट गया है, पानी पीना भी छूट गया है, केवल कृष्ण का स्मरण करने से। स्मरताम कृष्ण वीर जाने लीला पांग निरीक्षितम हसितम भाषितम चांग सर्वान्न शिथिला क्रिया। जब हम कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करते हैं, हम से तत्पर से सबके लिए, सभी यशोदा और सब लोग, जब कृष्ण की लीला का हम स्मरण करते हैं, क्या क्या लीला पांग निरीक्षित होते, लीला और इसके साथ साथ स्वरूप, लीला पूर्वक ही स्वाभाविक तुलसी चितवन उसकी आंखों से देखना जो हम ध्यान करते हैं, स्मरण आता है, और उसका हंसना और बोलना, हसितम भाषितम, श्रीकृष्ण का हंसना, श्रीकृष्ण का बोलना और उसकी लीलाएं, उसका प्रेम पूर्ण तिरछी नजर से देखना, जब हम स्मरण करते हैं तो स्मरण आते ही रहते हैं, तो सर्वान्न शिथिला क्रिया, हमारी सारी क्रियाएं शिथिल हो गई। सारी क्रिया से तात्पर्य है हमारा भोजन करना, सोना, चलना, फिरना, सब शिथिल होता जा रहा है, और शिथिल होते होते एक दिन निश्चित मरण हो जाएगा। यदि कृष्ण नहीं आएगा तो कुछ दूसरा ही दुर्दिन देखना पड़ेगा, परंतु हमारी जिस तरह से उसने रक्षा किया, जिस तरह से कृपा प्रकाश किया, तो हमें विश्वास है तो वो आएगा। नंद बाबा भी कह रहे हैं कि जो सायल है गोवर्धन पर्वत या और भी पर्वत जिस पर श्री कृष्ण ने लीला किया है, अब जिस जमुना में मानसी गंगा में उसने विहार किया है, सरित छैल वनोदेशा चार चीज कह रहे हैं, सरिताएं, शैल, वन और उत्त देश, बहुत सुंदर देश, समतल मैदान जहां तहां वन प्रदेश, वनोदेश, वन और उद्देश्य, सुंदर देश, मुकुंद पद भूषिता है, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्ह से अलंकृत हैं और आक्रीरण उसके विहार स्थल, इनको जब जब हम देखते हैं तो मनो जाति तदात्मता। इसका अर्थ है, जब पहले नंद बाबा ने कहा कि हमारी सारी क्रियाएं शिथिल होती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन शिथिल होती जा रही है कृष्ण का स्मरण करने से, तो वही हंसी देखने की इच्छा है, उसकी बोली सुनने की इच्छा है, उसकी चितवन को देखने की इच्छा है। चक्रवर्ती पादयात करते हैं कि बाबा जब कृष्ण का स्मरण आप घर पर ज्यादा होता है, आप कहीं गाय लेकर निकल जाइए और कृष्ण को भूल जाइए। घर पर रहने से ज्यादा स्मरण होता है तो वन में जाइए, पर्वत में जाइए और अन्य गोपों के साथ गाय चलाइए, मन भूल जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। तब कहते हैं नहीं उद्धव, कहीं भी जाता हूं तो उसका स्मरण होता ही रहता है। यदि मैं जमुना जी के किनारे जाता हूं वहां भी कृष्ण का स्मरण होता है, कृष्ण के चल चिन्ह सब जगह भरे हुए हैं। और शैल श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन में जब जाता है वहां तो और अधिक स्मरण होता है। गोवर्धन धारण करने की उसकी लीला याद आती है और गोवर्धन के कंदराओं में शिखर पर विभिन्न स्मरण आता है, वृंदावन में वहां भी चलो चिन्ह है, सब जगह लीला भूमि है, उसकी क्रीड़ा भूमि और उद्देश्य, कहीं ताल वन में जाता हूं उधर भी सब जगह स्मरण आता है। मुकुंद पद भूषिता में मुक्तिदाता, सब दुख से दूर करने वाले श्री कृष्ण के पद से, चरण से अलंकृत सब स्थान है। आक्रीरण, इन स्थानों में श्री कृष्ण ने क्रीड़ा किया है, विविध खेल किया है, लीला किया है। इक्षमाणा न मनोजाति तदात्मता, जब हम देखते हैं इनको मन तदात्मता, कृष्णमयता को प्राप्त होता है, कृष्णमय हो जाता है, अर्थात मन में बिल्कुल कृष्ण छा जाते हैं। तो न मैं घर में सुखी हूं, न वन में, न गोवर्धन में। तदात्मता का एक अर्थ है कि मैं, ऐसा होता है कि मैं कृष्ण लीला में बन जाता हूं, मैं ही गोवर्धन जैसा फील करने लगता हूं। इतना कृष्ण का स्मरण होता है, लगता है कृष्ण मेरे ही गोद में खेल रहे हैं। गिरिराज जी का स्मरण करने पर यह भाव होता है कि हमारे हृदय में कंदरा गुफा में श्री कृष्ण खेल रहे हैं। मनोजाति तदात्मता में, तदात्मता का अर्थ है कृष्णात्मता अथवा शरीर छल वनोदेशन सबके साथ लगेगा, और या आक्रीड़न क्रीड़ामयता को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इनका प्रेम विकार बढ़ने लगा तो नंद बाबा ने सोचा कि कृष्ण के ऐश्वर्य परक लीला की यदि याद करूंगा तो शायद कृष्ण का इतना आवेश हमको भूल जाए। तब ये कहते हैं, बहुत सोच समझ करके बात करते हैं, कहते हैं, मन्ये कृष्णम च रामम च प्राप्तौ इह सुरोत्तमौ सुराणा महदर्थाय गर्गस्य वचनम यथा। उद्धव, जैसा गर्गाचार्य ने हमसे कहा था, मैं कृष्ण और बलराम को सुरोत्तम मानता हूं। मैं यही मानता हूं कि ये दोनों में से एक विष्णु के अवतार हैं और एक संकर्षण के अवतार हैं। गर्गस्य वचनम यथा, जैसे हमारे गुरु महाराज ने गर्गाचार्य ने कहा था उसके अनुसार बोल रहा हूं, वचन को प्रमाणित कर रहे हैं। गर्गाचार्य ने कहा था गर्गस्य वचनम यथा, मैं गर्गाचार्य के अनुसार मैं अब मानने लगा हूं, मैं मानता हूं कृष्ण और बलराम सुरोत्तम हैं, भगवान शंकर और विष्णु भगवान हैं जो यहां अवतार लिए हैं। सुराणा महदर्थाय, देवताओं के लिए जन्म लिए हैं, देवताओं का कार्य करने के लिए, दैत्यों का वध करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, ऐसे इसलिए वे स्मरण कर रहे हैं कि ऐसा करने से तलस मन में आएगा कि चलो भगवान है, हमारे बेटा नहीं है, ये भाव शिथिल होगा। तो पुत्र भाव करके मैं मर रहा हूं, कृष्ण की याद कर रहा हूं, तो पुत्र भाव शिथिल हो और श्री कृष्ण बलराम में भगवत भाव हो, इसके लिए यह लीला की याद कर रहे हैं। लेकिन नंद बाबा का जो वास्तविक भाव है पुत्र भाव, वही हावी हो जा रहा है, वो दबा रहा है स्वर्ग भाव को। फिर भी याद कर, मन्ये कृष्णम च रामम च प्राप्तो इह सुरोत्तम। वास्तव में कृष्ण बलराम हमारे पुत्र नहीं है, वे तो दोनों सुरोत्तम हैं, देवताओं में सबसे उत्तम भगवान विष्णु और भगवान शिव, ये दोनों हैं। तो इसका अर्थ है कि मैं पुत्र न मन में न मान्य उद्धव, मैं उनको पुत्र नहीं मानना चाहता हूं, ये पुत्र मानने से बड़ा दुख हो रहा है। तो अब गुरु के वचनानुसार याद करें, कृष्ण बलराम दोनों देवता हैं, देवताओं में श्रेष्ठ हैं और देवताओं के कार्य के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, असुर वध के लिए दोनों आए हैं यहां पर। तो यह बात इसीलिए कह रहे हैं नंद बाबा कि पुत्र भाव तिरहित हो जाए, परंतु होता नहीं है। मन्ये कृष्णम च रामम च, और सुराणा महद अर्थ है, देवताओं का महान कार्य साधित करने के लिए वे आए हैं, भगवान विष्णु आए हैं, भगवान शंकर आए हैं, तो उनको पुत्र मानना कितना भारी अनर्थ है, कितना बड़ा दुस्साहस है। यह भीतरी भाव है कि इनको पुत्र क्यों माना जाए, ये तो पुत्र इतना दिन माना यही अपराध किया है। भगवान विष्णु को और भगवान शंकर जी को, जो जगत के पिता हैं, सबका पालन करते हैं, सबको बस में रखते हैं, उनको मैं पुत्र माना, यही अपराध है। कैसे मानते हैं कि कृष्ण बलराम दोनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, दोनों भगवान हैं, ये बात कैसे मानने लगे? तब कहते हैं, मानता हूं, कुछ देखा हूं, एक तो गुरु का वचन प्रमाण है, साफ बोले हैं कि ये दोनों, ये कृष्ण जो है ये नारायण समूह गुण है, ये गुणों में नारायण के समान है, नारायण ही इसके गुणों में इसके समान है, एक तो गुरु का वचन है और दूसरे मैं देखा हूं। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष में जो देखा हूं तो दूसरा प्रमाणिक श्लोक बोलने की क्या जरूरत है। जो चीज आपने देखा है तो कहते हैं कंसो नागायुत प्राणम, 10,000 श्रेष्ठ हाथियों का बल था कंस में और मैंने अपने आंख से देखा कृष्ण मार दिया उसको। तो भगवान नहीं है तो कौन है? भगवान ही मार सकते हैं ना। नागायुत प्राणम, प्राण मैंने बल, अयुत मैंने 10,000, 10,000 हाथियों का बल था कंस में, एक दो हाथी नहीं, दो चार या 100 हाथी नहीं, 10,000 हाथियों का बल था कंस में। और मल्लव गजपतिम तथा, और दोनों मल चारुण और मुष्टिक, इनमें भी 10,000 हाथी का बल था, ये सब में लगा रहे। और गजपतिम तथा और कुबलयापीर हाथी गजराज, इसमें भी 10,000 हाथी का बल था। ये सबके लिए विशेषण है। कंसम नागायुत प्राणम, मल्लव नागायुत प्राणव, और मल्लायुत प्राणम गजपति, अवधिष्ठान लीले इव, ये कृष्ण बलराम मिल करके और खेल खेल में इनका वध कर दे। कंस का, कुबले या फिर हाथी का, चारुड़ और मुष्टिक का, लीलया एव पशुनिव मृगाधिप, जैसे सिंह है खेल खेल में साधारण पशुओं को मार देता है, वैसे दोनों खेल खेल में ही मार दी। कोई हथियार नहीं उठाए, कुछ नहीं उठाए, किसी को तमाचा मारे मर गए वहीं पर, किसी को पैर से मारे मर गए। ये बलराम मुष्टिक को एक तमाचा केवल मारा। नंद बाबा बैठे थे उस रंगभूमि में, देखे थे। 10,000 हाथी का बल रखने वाला मुष्टिक, ये बलराम जी के बाएं हाथ के एक मुष्टिका लगने से मर गया, तमाचा लगने से, खून फेंकने लगा और चक्कर आ गया, उसे गिरा और मर गया। और चारुण को भगवान कृष्ण हाथ से पकड़ लिए, हाथ से पकड़ करके उसे दोनों हाथ और लगे घुमाने, इतना जोर से घुमाए कि वो आकाश में ही मर गया। उसके मरे हुए शरीर को फिर अखाड़ा में उन्होंने पटका। इन सब लीलाओं को श्री नंद महाराज ने अपने आंखों से साक्षात देखा था, बैठ करके मथुरा के रंगभूमि में। तो गुरु जी से जो सुने थे बात, उसको प्रैक्टिकल कर रहे थे। अब ये उस समय नहीं माने, उस समय कुछ नहीं माने कि कृष्ण ने वध किया, ये तो भगवान की कृपा है, नारायण की कुछ कर रहे हैं। और ऐसी स्वाभाविक लीला होती थी कि ये विश्वास ही नहीं होता था कि बलराम मार सकता है या कृष्ण मार सकते हैं। 10,000 हाथी का बल रखने वाला 11 वर्ष के लड़के के तमाचे से मरेगा? एक हाथी भी नहीं मर सकता है। हाथी क्या मारेगा? हाथी के पास जाएगा वही कुचल देगा। लेकिन इतने बलवान मुष्टिक को, पहलवान को, जो वर्षों से तैयारी करके रखा गया था कृष्ण का वध करने के लिए, बलराम का वध करने के लिए, केवल इनका यही काम था, रोज कुश्ती लड़ते थे और तैयारी में रहते थे कि कृष्ण बलराम को मारना है। इसी पर सरकार भारी वेतन दे रही थी, कंस बहुत भारी वेतन दे, सैलरी दे रहा था। बहुत प्यारे पहलवान थे उसके, सब राष्ट्रीय पहलवान थे, सरकार के द्वारा हाई सैलरी मिलता था। काम क्या था कि भगवान कृष्ण को बलराम को मारना है। वर्षों से जिनको तैयार किया गया था, जो खूब खाए पिए थे, प्रसन्न थे, सब थे, बल्कि जब वो लोग लड़ने का प्रस्ताव रखे, चारुण ने कहा कि आप लोग कुश्ती दिखाइए, राजा का मनोरंजन करें, हम लोग, हम भी प्रजा हैं, आप भी प्रजा हैं, तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने डिनाई किया, नहीं नहीं, हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग बड़े बड़े पहलवान हैं, हम लोग भी मनोरंजन करेंगे राजा का, लेकिन हम अपने साथियों के साथ कुश्ती दिखाएंगे, जो हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ ही, हम इनके साथ लड़ेंगे, कुश्ती दिखाएंगे, और आप लोग भारी भारी पहलवान आपस में लड़िए, राजा का मनोरंजन कीजिए, इंटरटेनमेंट कीजिए। तो शार्ल कहता है, न बालो न किशोरस्तुम बलश्च बलिनां वरः, तुम बच्चा हो, किस मुख से कहते हो कि मैं बच्चा हूं? तुम बच्चा नहीं हो, न किशोर हो, और ये बलराम, और तुम बलवानों में सबसे श्रेष्ठ बलवान हो। अभी अभी लीलापूर्वक खेल खेल में कुबलया पेड़ हाथी को मार दिया और बच्चा बनते हो, बच्चा नहीं हो। और उसको वास्तव में भगवान दिखाई दे रहे थे महापर्वत के समान वज्र शरीर वाले दिखाई दे रहे थे, वो झूठ नहीं बोल रहा था। महाकाय दिखाई दे रहे थे भगवान और वज्र जैसा कठिन शरीर, इस तरह से बोला है। भगवान कह रहे कि नहीं, ठीक नहीं है लड़ना है, हम लोग बच्चा हैं, बच्चों के साथ युद्ध दिखाना चाहिए। कहा नहीं नहीं, देखो तुम मेरे साथ जोर आजमाओ और मुष्टिक बलराम के साथ, अपने लिए श्री कृष्ण को ही चुना है। चारूण कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत को, यही है ना। तो फिर युद्ध हुआ और बहुत देर तक युद्ध हो रहा था। भगवान उस सभा को धारण किए थे, लीला दिखा रहे थे कि उस सभा में रहने वाली स्त्री और पुरुष सभी लोग कहने लगे, महान महान अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। चारुण भी मारता था भगवान पर मुष्टि का तमाचा मारता था, क्या क्या प्रहार करता था, कभी फेंक देता था, कभी खींचता था, कभी घुमाता था। और श्री कृष्ण के शरीर पर सुंदर मुख कमल पर परिश्रम की बूंदे आ गई थी, बहुत भारी परिश्रम हो रहा था। और श्री कृष्ण भी लगता था हांफ रहे हैं, हांफ रहे थे, जीतने का प्रयास कर रहे थे। स्त्रियां तो कहती हैं बहुत गलत रूप से इन लड़कों को फंसाया गया है, यहां पर अन्याय हो रहा है, इस सभा में जो रहेगा उसको ही पाप लगेगा, अच्छा यही है कि सभा में प्रवेश न किया जाए। वे कहती तो हैं लेकिन कोई सभा से निकल कर जाती नहीं थी, क्योंकि श्रीकृष्ण को देखे बिना नहीं रहा जाता था। तो भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे कि हमने आज तक भगवान विष्णु की जो भी पूजा किया, हमने दान दिया ब्राह्मणों को, यह तप किया, उपवास किया, सबका यह फल हो कि कृष्ण इसका वध कर दे। सब लोग अपना अपना पुण्य लगा दिए, ठीक वैसे ही जैसे सीता जी के स्वयंवर में धनुष नहीं टूट रहा था और जब श्री भगवान गए मंच पर तो सभी जनकपुर के लोग विशेष करके स्त्रियां अपना अपना पुण्य अर्पित करने लगी। सीता जी तो कहती है, गणनायक बरनायक देवा आज लगी किन्हों तुस्तु सेवा, हे गणपति जी आज फल दीजिए, मैंने जो भी सेवा किया है आपकी, इसके प्रभाव से राम धनुष तोड़ दे। और जितने भी लोग थे सब लोग अपना अपना पुण्य अर्पित किए। ये भगवान को इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये तो भाव है, भक्ति है, तो श्री राम धनुष को तोड़ दिए। ऐसे तोड़े लगा कि छुए बस टूट गया, छुअत टूट रघुपतिहीन दोष। लक्ष्मण जी तो कहते हैं कि इसमें रघुपति का क्या दोष है, परशुराम जी से कहते हैं वो छुए और टूट गया तो अब क्या किया जाए। परशुराम जी बहुत जोम में आए थे, बोल रहे थे बेढंगा, कौन धनुष तोड़ा, और सबसे ज्ञानी जनक जी को कहते हैं, अरे जड़ तो पत्थर हो गए हो क्या, कहुजर जनक धनुष का तोड़ा। जब श्री परशुराम जी आए सभा में तो इनका जस तो सर्वत्र विख्यात था, ये ब्राह्मण किस तरह से क्षत्रियों का संहार किया है, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के केवल परशु, और 21 बार क्षत्रियों का संहार किए थे, सहस्रबाहु अर्जुन का वध किए थे। विख्यात बात थी। तो जब भगवान ने धनुष तोड़ दिया, बहुत भयंकर आवाज हुई। उस आवाज को सुन करके या सभा की बात सुन करके पहले श्री परशुराम भगवान आए। उनको देखते ही सारे राजा डर गए। अब तो धनुष तोड़ने वाले की ये खबर लेंगे, उसको मारेंगे। तो बहुत खुश भी हुए लेकिन डर गए। तो अपने अपने बाप का नाम ले लेकर के सब प्रणाम कर रहे थे, सरकार हम इस देश के हैं, इस राजा के लड़के हैं। और श्री परशुराम भगवान केवल देख रहे थे। अच्छा, जिधर देखते थे तो उधर राजा लोग खड़े होकर कहते थे, हम इस देश के राजकुमार हैं। ठीक है, तब विश्वास होता था कि अब हमको नहीं मारेंगे। वीर भेष में भगवान थे, भगवान का अद्भुत बल है। कोई सेना लेकर के परशुराम जी नहीं जाते थे, अकेले और राजाओं के बीच में सबको काट कूट करके खत्म कर देते थे। भगवान का कोई क्या कर सकता है। तो सब लोग डर करके प्रणाम करने लगे, प्रणाम करने लगे। तो इसके बाद सब लोग शांत होकर के जब बैठे, प्रणाम प्रणाम सब खत्म हो गया। इसके बाद देख शिव जी का पूज्य धनुष दो खंड में पड़ा हुआ है। जब धनुष की तरफ दृष्टि गई तो उसी क्रोध मुद्रा में वे जनक जी का भी अपमान करते हुए बोले, कहुजर जनक धनुष का तोड़ा। अरे जड़ जनक, ये तुम्हारा गांव है ना, ये सभा तुम इकट्ठा किए हो ना, धनुष तुम तोड़वाए हो ना, पहले ये बताओ। अरे मूर्ख, ये बताओ कि ये धनुष कौन तोड़ा है। सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जय हई सब राजा। जो धनुष तोड़ा है यहां निकल करके आ जाए, केवल उसी का वध करूंगा, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। इसका मतलब है कि राजा लोग स्वयं ही भेजे उसको, कौन तोड़ा है, इतना बड़ा अपराध कौन किया, कौन धनुष तोड़ा है। अब तो जनक जी को तो काठ मार गया है, हम क्यों कहें। कुछ हुड राजा संकेत कर रहे होंगे ऐसे उंगली दिखा करके, वो तोड़ा है, वो तोड़ा। सबसे ऊंचे मंच पर भगवान बैठे थे। धनुष तोड़ करके बैठे थे। अगर वहां खड़े होते तो भगवान परशुराम जान गए होते तो यही तोड़ा है, तो मंच पर बैठ गए। तो जनक महाराज बोल ही नहीं रहे थे, सही सारी सभा सन्न हो गई। जो अच्छे राजा थे वे तो डर डर रहे थे, भगवान राम के मंगल की कामना कर रहे थे। लेकिन जो हुड थे, बदमाश सब खौल थे, वे चाहते थे कि राम मारे जाए। अच्छा हुआ हमको दंड नहीं देना पड़ा, परशुराम जी ही आ गए, करो विवाह, तोड़ धनुष। ये सब हो गया। तो भगवान ने देखा कि जनक महाराज डरे हुए हैं और सब लोग विषण हैं, चिंता में हैं। तो भगवान परशुराम जी के पास आए, प्रणाम किए, हाथ जोड़ करके बोले, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, कोई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपके दासों में से कोई एक है, क्या आज्ञा है, क्या सेवा करूं। तो मैं ही वो हूं, तो मैं आपका दास हूं, आपकी क्या सेवा करूं। सुना हूं राम जो शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। दास कहते हो जो उनका सेवक, सो जो कराए सेवकाई, रिपु करनी करी करिए लड़ाई। जब दुश्मन का शत्रु का काम किया तो लड़ाई होनी चाहिए। तो जो शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्रबाहु अर्जुन के समान मेरा बैरी है, मेरा शत्रु है। और फाइनल निर्णय दिया, सुना हूं राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, ये है वो है वो। भगवान ने कहा कि मैं आपका शत्रु कैसे होता, आपकी बराबरी करने का कोई मतलब ही नहीं है, आप तो स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। क्षत्रिय वैसे ही ब्राह्मणों के सेवक होते हैं, हम में तो एक गुण है, एक धनुष में रस्सी लगी है, रस्सी को गुण कहते हैं, हमारे पास तो हे देव एक गुण है और आपके पास तो नौ गुण है, जनेऊ में नौ धागा होता है, नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे, और ये गुण तो मार काट करने वाला है, और आपका जो गुण है वो क्षमा दया शांति वेदाध्ययन आदि इन गुणों से युक्त है, तो आप में नौ गुण है, हमें तो एक गुण है, हम कैसे आपकी समानता कर सकते हैं। भगवान बहुत शीतल वचन बोल रहे थे और परशुराम जी उखड़ते जा रहे थे बिना मतलब। जो व्यक्ति क्रोध में होता है वो अपनी ही हानि करता है ना? तो श्री भगवान का अपमान श्री लक्ष्मण जी नहीं सह सकते। वे आगे बढ़ाए और बोलने लगे बहुत कड़े स्वरों में। पहले उन्होंने कहा कि पहले आप कहीं बैठिए, खड़े खड़े परेशान हो रहे हैं, कहीं बैठिए, चल करके आओ, और यहां भी खड़े स्वरी हो गए, ठीक नहीं है, बैठिए, बैठू हुई पाए पिराने, पैर में दर्द हो रहा होगा, बैठिए। तो कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि कौन धनुष तोड़ा, कौन धनुष तोड़ा, मैं तो मान रहा हूं कि श्री राम धनुष तोड़े नहीं, तो छुआ धनुष टूट गया, बहुत पुराना धनुष होगा, सड़ा गला, छूटे ही टूट गया, और ऐसी धनु ही हम लोग खेलते समय कई तोड़ करके फेंके हैं, खेलने में ऐसी धनु, धनुष नहीं कहा, धनु ही कई तोड़ करके फेंका है, तो ये एक टूट गया तो आपको क्या दुख है इस बात का, बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहू न असर इस कीन गोसाई, ऐसी धनु ही कई बार तोड़ करके फेंके हैं, उस समय आप कभी क्रोध नहीं किए, इस सड़े गले धनुष पर आप क्यों क्रोध कर रहे हैं इसके तोड़ने को। तब परशुराम जी कहते अरे सठ अरे मूर्ख बालक, तुमको ये ज्ञान शिव जी का धनुष और धनु ही तुम एक कह रहे हो, तुम लगे कुल्हाड़ी दिखाने, देख रहे हो सहस बाह भुज छेद निहारा परस बिलो की महीप कुमारा, अरे राजा के पुत्र तुम देख रहे हो ये कौन कुल्हाड़ी है, कौन परसु है, सहस बाह भुज छेद निहारा, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाली कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी के टांगा कहेंगे ये वह परसु है, इसको देखो देखो, देख करके शायद नहीं समझोगे, मैं सुना रहा हूं कि इसी ने सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को काटा, अनेक बार इस पृथ्वी पर से मैं क्षत्रियों को काट कूट करके और ब्राह्मणों को राज्य दिया, ऐसा वो बोलते हैं। वास्तव में परशुराम जी ने ब्राह्मणों को राज्य दे दिया क्षत्रियों को मार करके, पर ब्राह्मण लोग बेकार थे, राज्य चलाने में समर्थ नहीं थे, तो फिर भगवान ने राज्य दे दिया क्षत्रियों को, ये कथा है श्रीमद् भागवत में, तो उसकी याद दिला रहे हैं कि यो कुल्हाड़ी है इसे मैंने काटा है क्षत्रियों को। तो परशुराम भगवान लक्ष्मी जी कहते हैं देखिए इस तरह से कुल्हाड़ी मत दिखाइए, आपको मैं इसीलिए क्षमा अब तक कर रहा हूं कि जनेऊ लगाए हैं, पहचान ब्राह्मण है, बेचारे ब्राह्मण को नहीं मांगना चाहिए, विप्र समझ करके मैं कुछ नहीं कर रहा। तो परशुराम जी तो और दग्ध हो गए, आज दया दुख दुसह सहारा, आज मैं दया के कारण सब सह रहा हूं, दया ये दुख सहवा रही है, अर्थात दया के कारण तुमको नहीं मार रहा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं दया होने पर इतना क्रोध हो रहा है, तो क्रोधित हो जाइए तो क्या होगा, दया कर रहे हैं, दया करके राजपूत का वध नहीं कर रहे, लक्ष्मण जी का वध नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं। आज दया दुख दूसरा है सहारा, ओह दया ने आज बहुत दुख सहवा दिया। अजीब अजीब भाषा है, जब दया आ रही है इसलिए नहीं मार रहा हूं, यही दया है। इस तरह सूर्य पटांग बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। धनुष तोड़ने की बात कह रहे, तो इस तरह से बहुत बातें हुई। अंत में भगवान परशुराम जी समझ गए कि ये तो साक्षात परब्रह्म है, भगवान है, अवतार लिए हैं। उसकी पहचान थी, उनके पास जो धनुष था उसके विषय में कहा गया था कि यह धनुष अपने आप जिसके पास चला जाएगा तो वही साक्षात भगवान होंगे, ये समझ लेना, और उसके बाद तुम तपस्या करना, लड़ाई झगड़ा बंद करना। तो इस संदेह को मिटाने के लिए भगवान कहे भगवान श्री राम से कि ये धनुष लो और मेरा संदेह मिट। तो धनुष देने लगे, धनुष अपने आप भगवान राम के पास चला गया, तो उनका संशय मिट गया और भगवान राम को प्रणाम किए, अनेक बार जय जयकार किए और इसके बाद वन में चले गए मलयगिरी में तपस्या करने के लिए। आज तक वे तपस्या में निरत हैं और अब कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, शांत शांत भगवान हैं, लेकिन लोक में दिखा रहे ऐसे भजन करना चाहिए। नहीं, महेंद्र पर्वत पर, महेंद्र पर्वत पर वही भीष्म पितामह के धनुर्विद्या के गुरु थे, कर्ण के भी गुरु वही थे। कई लोगों को धनुर्वेद सिखाए थे, स्वयं युद्ध नहीं करते। मैं किस बात से इधर आ गया, चारों को घुमा दिया भगवान ने, घुमा करके पटक दिया, पहले ही मर चुका था। और गजपति को, गजों में जो सरदार था कुबले अकील, उसकी पूंछ पकड़ करके घुमाते रहे और सूंड पकड़ करके, और अंत में उसको पटके अपना एक लात दिए उसके कंधे पर, एक दांत उखाड़ दिए उसका, दांत उखाड़ करके उसी दांत से उसको पीटने लगे। तो जब बलराम जी ने देखा कि कृष्ण एक दांत उखाड़ा है तो दूसरा दांत वो भी उखाड़ दिया और वो भी पीटने लगे। कुबलाया पीड़ मर गया, उसका लाश अलग कर दिया, गेट खुल गया, उसी रास्ते से कृष्ण बलराम दोनों प्रवेश किए और हाथी दांत ले लिए थे अस्त्र के रूप में, सभा में प्रवेश किए। हाथी को मारते समय तो श्री नंद महाराज देखे नहीं थे, तो सभा में पहले ही बैठ गए थे। किसने कहा था कि बाबा आप लोग चलिए सीट लीजिए, हमको तो कहीं भी मिल जाएगा सीट, लेकिन आप लोगों को कठिनाई पड़ेगी, और वो पहले चले जाइए पहले। वे नहीं चाहते थे कि नंद बाबा देखें कि ये लोग हाथी से लड़ाई किए, तो नंद बाबा बहुत घबराते या कह देते कि क्या जाने की जरूरत है, छोड़ दो रास्ता बंद है तो इधर ही रह जाओ, जाने की जरूरत नहीं है, खतरा है। जब मूल गेट पर ही हाथी तिरछा खड़ा किया गया था, कृष्ण जाकर के महावत से कहे कि एम्बस्ट, महावत हाथी को अलग करो, रास्ता साफ करो, और नहीं, अगर तुमने नहीं किया तो तुमको और हाथी को दोनों को जमराज के यहां भेज देंगे। तो मारना ही था, उसमें क्रोध पैदा करना था। इतना सुनते ही अम्बस्ट, हाथी का चलाने वाला महावत, काल के समान भयानक हाथी को प्रेरित किया कृष्ण को मारने के। तो यदि नंद बाबा होते वहां तो कृष्ण को रोक दिए होते, क्या जाने की जरूरत है, छोड़ो चलने ब्रज में लौट जाओ, नहीं जाना। अपने बेटा को लेकर के लौट जाते तो कोई जबरदस्ती थोड़े करता कि नहीं नहीं रहो। कंस भी बड़ा धूर्तता से उनको बुलाया था अक्रूर जी के द्वारा, तो भगवान नहीं चाहते थे कि नंद बाबा का हृदय घबराए और वे हमको लीला करने से रोक दें, रोक सकते थे ना, इसलिए पहले भेज दिए, जाकर आप लोग सीट लीजिए, राजा कौन सा आपके लिए रखा होगा सिंहासन में, कुर्सी जो भी है रखा हो, लिखा भी होगा ब्रजवासी ब्रजवासी जो यहां बैठेंगे, कृष्ण बलराम पे तो स्पेशल सीट था, कृष्ण बलराम बैठे, तो इनको जाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु जो मुख्य अतिथि थे कृष्ण बलराम, वे रास्ते में न आवे हाथी ही मार दे दोनों को, कंस इसकी व्यवस्था किया था, कहा भी था कि महावत सुनो, हाथी को ऐसी जगह खड़ा करना जहां निकलने की जगह न हो गेट पर, दोनों आएंगे बस हाथी को प्रेरित करके उनको चिरवा देना, मार देना, तो इसलिए मैं ये याद करूंगी नंद बाबा कुबलाया पीर हाथी के वध को नहीं देखे थे, पर सुने तुरंत वही लोग हल्ला कर रहे थे कि हाथी को मार दिए लोग, हाथी को मार दिया, उसका प्रमाण ये था कि दोनों हाथी का दांत लिए लिए प्रवेश किए, उसको तो नंद बाबा ने देखा था, हाथी दांत लिए हुए हाड़ टांगे हुए दोनों भाई प्रवेश किए, फिर भी बहुत सुंदर लग रहे थे, हाथी का दांत महंगा होता तो उसको क्यों छोड़ दे, लिए लिए ही प्रवेश किए, ये सब लीलाएं नंद बाबा ने देखा था। तालक त्रयम महासारम, और जो धनुष तोड़े थे उसके विषय में कुछ कह रहे हैं, तो हम यहीं पर बात बंद करते हैं। नंद बाबा रात भर बोलते रहे और उद्धव जी भी रात भर जवाब देते रहे, दोनों सोए नहीं, वो रात ऐसे ही बीत गए कृष्ण की वार्ता करने में। शेष प्रसंग को कल कहा जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।